मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं समाज इस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी छोटी छोटी घटनाओं को देख लेते हैं। आपने हमारे दूरदर्शन के न्यूज में भी यह खबर सुनी होगी और साथ ही साथ अखबारों में भी, भले ही वो थोड़ी सी जगह मिली हो, कुछ कुछ अखबारों में भी यह पढ़ने को मिला होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वे ताजिकिस्तान गए हुए हैं और वहां इसलिए गए हुए हैं कि वहां हार्ट ऑफ एशिया ये एक तरह का कॉन्फ्रेंस जैसा ही है, एक सम्मेलन जैसा है, उसमें भाग लेने के लिए। इसका 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, यानी कि इसमें जो मंत्री होते हैं प्रत्येक देश के, जो भी उसमें भाग ले रहे हैं उन देशों के, वे आते हैं हार्ट ऑफ एशिया। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये देखिए 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है और हार्ट ऑफ एशिया को लेकर के इस बीच में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि कोई प्रश्न पूछा गया हो। तो पहली बात तो ये कि हार्ट ऑफ एशिया के बारे में आपको बहुत विस्तार से तैयारी करने की कोई जरूरत मुझे खासकर मालूम नहीं पड़ती। लेकिन एक यहां पर फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे विदेश मंत्री गए हैं हार्ट ऑफ एशिया इसमें भाग लेने के लिए, और ये जो सम्मेलन होता है इसका मूल विषय होता है अफगानिस्तान, यानी कि जो अफगानिस्तान की जो स्थिति है, कैसे वहां शांति की स्थापना की जाए, कैसे उसका उसके विकास में सहयोग दिया जाए। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के इशू के बारे में बात होती है। तो यदि अफगानिस्तान के बारे में बात हो रही है तो डेफिनेटली भारत के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हो जाता है। अब हम सम्मेलन से हट करके फिर जब तैयारी करेंगे तो आ जाएंगे भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन पर, कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध। आपको शायद मालूम होगा कि अफगानिस्तान अभी भी जो कट्टरपंथी जो लोग हैं उनके कब्जे में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके दबाव में है। और कभी कभी इस बात के प्रति आशंका भी व्यक्त की जाती है कि कहीं ऐसा न हो कि अफगानिस्तान की बहुत बड़े हिस्से पर ये तालिबानियों का कब्जा हो जाए, और अगर तालिबानियों का कब्जा होता है या तालिबान के बहुत ज्यादा दबाव में अफगानिस्तान रहता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर के यह कि अगर आपको किसी एडिटोरियल कमेंट में या आर्टिकल के फॉर्म में जो हार्ट ऑफ एशिया का सम्मेलन हुआ है उसके बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है तो आप उसमें से केवल भारत और अफगानिस्तान के संबंधों से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है तो बस आप उसे नोट कर लें, आपका काम चल जाएगा। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी आपको इसी पैटर्न पर ही करनी चाहिए, अदरवाइज आप कितने सारी घटनाओं को अपने दिमाग में रख पाएंगे। इसी तरह से देखिए अखबारों में एक छोटी सी घटना आपको और पढ़ने को मिली होगी, हालांकि सभी अखबारों में ये नहीं है, कि अभी एक नौसेना का अभ्यास होने जा रहा है बंगाल की खाड़ी में, नौसेना का अभ्यास। और ये जो अभ्यास हो रहा है ये फ्रांस के नेतृत्व में हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्वाड के देश भाग ले रहे हैं। आप जानते हैं जो क्वाड संगठन है इसके 4 सदस्य हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। लेकिन ये अभी पहले भी होता था, ये अभ्यास पहले भी होता था, नौ सैन्य अभ्यास, लेकिन भारत इसमें पहली बार भाग ले रहा है, ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो इस तरह के जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों का ये फर्ज बनता है कि वो कौन से तथ्य हो सकते हैं ऐसे, उसकी ओर आपका ध्यान ले जाएं। जैसे कि मैंने अभी हार्ट ऑफ एशिया की बात कही तो उसमें अगर कोई पॉइंट आता है तो जब आप भारत अफगानिस्तान की चर्चा करेंगे, मान लीजिए कोई प्रश्न आता है, उत्तर लिख रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप किसी तरह से उस पॉइंट को लेकर के आ जाएं। तो एग्जामिनर को लगेगा कि देखो कितना अपडेट जानकारी इसके पास है, कितनी अपडेट जानकारी है। ठीक इसी तरह से क्वाड के बारे में है कि भारत इस सम्मेलन, क्वाड के बारे में नहीं कहना चाहिए, आप यूं कह लीजिए बंगाल की खाड़ी में जो सैन्य अभ्यास होने जा रहा है, नौ सैन्य अभ्यास, उसके बारे में है कि किस तरह से, हालांकि ये हो रहा है फ्रांस के नेतृत्व में लेकिन भारत भी उसमें भाग ले रहा है, पहली बार भाग ले रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसी में आप एक तथ्य और जोड़ सकते हैं कि 1998 में भारत ने जब अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, उस समय अटल बिहारी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय अमेरिका ने उस परमाणु परीक्षण का बहुत ज्यादा विरोध किया था, यूरोप के दूसरे राष्ट्रों ने भी बड़ा विरोध किया था, भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस ऐसा देश था जिसने भारत के इस परमाणु परीक्षण का समर्थन किया था। मतलब एक बहुत बड़ी बात थी। और सच पूछे तो 1998 के बाद से ही भारत और फ्रांस के संबंध काफी बेहतर होते चले गए, और खासकर सामरिक मामलों में। इस तरह के जो युद्ध संबंधी मामले होते हैं, भारत और फ्रांस लगातार एक दूसरे के निकट आते चले गए हैं। दोस्तों, म्यांमार की घटना आप सबके सामने है कि किस तरह से म्यांमार में तख्तापलट के बाद लगातार आंदोलन जारी है। वहां के जो लोग हैं इस सैन्य शासन का जबरदस्त रूप से विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से आप देखें कि उन प्रदर्शनकारियों पर सीधे खुलेआम गोली चलाई जा रही है, और जिसमें लगभग 500 से अधिक जो नागरिक हैं वो मारे जा चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या स्थिति होती है, लेकिन जो पूरा विश्व है, आप कह लीजिए भले ही दबी जवान से ही सही, लेकिन इस कृत्य के लिए डेफिनेटली म्यांमार की बहुत ज्यादा आलोचना कर रहा है। अब इसका निराकरण किस तरीके से हो पाता है, लेट अस सी। चूंकि म्यांमार की घटना हो रही है, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, इस नाते भारत का चिंतित होना एक बहुत ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहां तक भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि चूंकि म्यांमार में इस तरह की स्थितियां हैं, तो जो हमारा म्यांमार से लगी हुई जो सीमा है उससे वहां के जो नागरिक हैं उनके भारत में आने की आशंकाएं भी धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, यानी कि वो घुसपैठ कर सकते हैं। भारत के लिए अभी तात्कालिक चुनौती दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, छोटी छोटी खबरों के बारे में बस इतना ही। आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं, और वह है समाज। जब आप अपने सिलेबस पर जाएंगे तो समाज जैसा अलग से शब्द आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप जब दूसरे रूप में आपको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में जानना है। तो इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर जानना है तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि समाज क्या होता है ना। वह इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज, भारतीय समाज की विशेषताएं, और इस पर हर साल मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं प्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। सिविल सर्विस की तैयारी फ्रेंड्स इस बात की डिमांड करती है कि आप जिस भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं उस टॉपिक पर जो आपकी समझ है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। और यह स्पष्टता ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही उलझाव के बीच से आपको हासिल करनी है। आप केवल थोड़ा सा अगर सतर्क होकर के किसी तथ्य को पढ़ना शुरू करेंगे, स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखेंगे, जहां भी बात समझ में नहीं आ रही है रुक करके उस पर थोड़ा विचार करेंगे, तो आपकी स्पष्टता बढ़ती चली जाएगी, एकदम से बढ़ती चली जाएगी। जैसे समाज, अब आप देखिए कि एक दिन में पता नहीं कितनी बार हम लोग समाज शब्द का प्रयोग करते हैं, करते ही हैं। एक बहुत ही जाना माना इसके लिए वाक्य है, कोटेशन है, जो अरस्तु का है कि मनुष्य जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी है। अंग्रेजी में मैन इज बाय नेचर ये सोशल एनिमल। मनुष्य जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी है। अब यहां शब्द दिया इंग्लिश में है बाई नेचर, बाई नेचर यानी कि प्रवृत्ति से ही, लेकिन हिंदी में अनुवाद आपको मिलेगा कि जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी है। चलिए जो भी अनुवाद कर दिया गया हो, लेकिन हिंदी में प्रचलित यही किया गया है कि वो जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी है। तो अब इसमें समाज, सामाजिक शब्द आया है जो समाज से बना हुआ है, तो वो सामाजिक प्राणी जन्म से ही कैसे है, बताइए जन्म से ही वो कैसे है। जब आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो गंभीरता से विचार करने पर आपको पता लगेगा कि नहीं, यहां हम जिस समाज की बात कर रहे हैं कि जन्म से ही समाज की बात कर रहे हैं, वह समाज उस दूसरे समाज से अलग है जिसके बारे में हम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहेंगे कि अच्छा 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 वो इस समाज का व्यक्ति है, वहां समाज जाति पर आधारित हो जाता है, जाति पर आधारित हो जाता है। गांव में आपको इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलेंगी कि अच्छा हमारे समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिए यहां यह समाज अलग हो गया है, और अरस्तु जिस समाज की बात कर रहे हैं वह समाज अलग है। और जब सिलेबस में आपके आपको दिया हुआ है भारतीय समाज की विशेषताएं, तो फिर वो भारतीय समाज कौन सा हुआ। आप देख रहे, थोड़ा सा आपको अब अंतर पता लगा होगा, थोड़ी सी उलझाव की स्थिति आई होगी। एक कम्युनिटी के लोग, जो समुदाय के लोग होते हैं, अब मैं समाज की जगह एक शब्द लेकर के आया हूं कम्युनिटी। जब कम्युनिटी के लोग जब बात करते हैं कि हमारे समाज के लोग, तो वो अपने जाति समूह की बात कर रहे होते हैं। तो अब आप देखिए कि वहां जो समाज है या जो समुदाय है वो जाति पर आधारित हो गया। और इसी तरीके से फिर एक शब्द हो जाता है संगठन, संगठन भी है। तो संगठन में भी कहीं ना कहीं वो सदस्य हैं। अगर आप महानगरों में जाएंगे तो महानगरों में आपको दूसरे नगरों में भी अब बनने लगे हैं कि वहां कॉलोनी में या कुछ एरियाज में कम्युनिटी सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं, कम्युनिटी सेंटर। आगे चल करके आप पढ़ते हैं, चाहे वो पर्यावरण के बारे में पढ़ें या दूसरी समस्याओं के बारे में पढ़ें, कि अब जो है ना हमें अपनी कम्युनिटी को शामिल करना चाहिए। जो आपदा प्रबंधन है ना, आपदा प्रबंधन में अब कम्युनिटी को भी शामिल करना चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है कम्युनिटी को भी शामिल करना चाहिए। तो क्या यहां कम्युनिटी को शामिल करना चाहिए इसका मतलब किसी जाति विशेष के समूह को शामिल करना चाहिए? तो आपको पता लगेगा कि नहीं, कम्युनिटी को शामिल करने का मतलब है कि अगर गांव के संदर्भ में कहा जा रहा है, यदि बात गांव के संदर्भ में कही जा रही है, तो सीधी सी बात है कि उस गांव के लोगों को शामिल करना चाहिए। तो कम्युनिटी को शामिल करना चाहिए इसका मतलब होगा कि वहां के लोगों को, आम लोगों को, नागरिकों को शामिल किया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि पता लगा कि यहां जो कम्युनिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है यह बिल्कुल अलग ही तरीके से हुआ है। तो दोस्तों, मैंने तीन चार शब्दों के बारे में अभी आपको बताया है। एक समाज, जिसके एक सोशियोलॉजिकल सामाजिक समाज शास्त्रीय परिभाषा है। दूसरा समाज, जिसका उस इस्तेमाल हम बोलचाल की भाषा में करते हैं। तीसरा समुदाय, समुदाय का भी जो प्रयोग है वो स्थानीय स्तर पर किया जाता है और शासकीय या प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है। तो इनमें मूलभूत अंतर क्या है? जब हम इस तरीके से अंतरों को समझ लेते हैं, तब सही मायने में आप ये मान करके चलिए कि हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जब आप इस विषय पर आएंगे तो पाएंगे कि इन सभी अंतरों को मैंने बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर बहुत विस्तार के साथ समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दीपक सिबोरन, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री भी उदयपुर से, और दीक्षा मेघवाल भी उदयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे दो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। ये स्टूडेंट हैं योगेश दिवाकर और मृग वायद। आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।